कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज किरीति ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज किरीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। जिस प्रकार गोपाल जी को भोग लगाया माधवेन्द्र कोई ठाकुर ने, गांव में जो भी सामान था सब ला करके पकाया गया, तब प्रतिदिन भोग लगने लगा। चलिए एक ही दिन खिला करके बाकी दिन भगवान को उपवास रखा जाए, प्रतिदिन भोग लगने लगा। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्रामे जत छिल गोपालेरा आगे लोक आनिया धरिल। गांव में जो भी अन्न था, अनाज दूध दही घी था, सब लोग अपने अपने घरों से गोपाल जी के ला कर रख दिए। पूर्व दिन प्राय विप्र करिल रंधन तैसे अन्नकूट गोपाल करिल भोजन। पूर्व दिन जिस प्रकार से भोजन बना था ब्राह्मणों ने बनाया था, उसी तरह से आज भी बना है। अन्नकूट महोत्सव हुआ, श्रीकृष्ण दस कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रजवासी लोके कृष्ण है सहज प्रीति। ब्रज में जिनका जन्म हुआ है, जो ब्रजवासी हैं, उनका कृष्ण में स्वाभाविक प्रेम रहता है, प्रीति प्रीति उनका प्रीति प्रेम स्वाभाविक रहता है। ब्रजवासी लोके कृष्ण है सहज प्रीति, ब्रजवासियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रहता है और गोपाल की भी प्रीति ब्रजवासियों में स्वाभाविक होती है। भगवान भी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं और ब्रजवासी उनसे प्रेम करते हैं। ब्रजवासी वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं। एक बार मैं नंद गांव में गया था, यशोदा कुंड पर देखा, वहां हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी भी हैं और राधा कृष्ण का मंदिर फोटो रखा हुआ था। लड़के सब खेल रहे थे वहां, शाम का समय था, तो हनुमान जी की आरती में वो भाग लिए, शिव जी को भी प्रणाम किए, कृष्ण को नहीं किए। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि राधा कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सबको प्रणाम किए। तो मैं 10 बच्चे थे उनको बुलाया, पूछा कि तुम लोग शिव जी को प्रणाम किए, हनुमान जी को किए और भगवान को क्यों नहीं प्रणाम किए? कौन भगवान? कृष्ण को क्यों नहीं प्रणाम किया? तो कहते हैं ये तो अपने घर का है, ऐसे लड़के बोले। हनुमान जी तो देवता है, शिव जी देवता है, तो इसलिए उनको प्रणाम, इसको क्या प्रणाम करना है, तो अपने घर का है, स्वाभाविक बोले हुए। प्रतिदिन देखता तो कृष्ण को प्रणाम नहीं करते थे, हनुमान जी को करते थे, शिव जी को करते थे। हमने सोचा महसूस के आ गए लड़के, यहाँ देखते हैं सब जगह हनुमान जी शिव जी हैं, भगवान बहुत कम है ना, ठीक है हनुमान जी से प्रेम होना चाहिए, परंतु सबसे जरूरी है कि भगवान कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, वही परमेश्वर है। तो ब्रजवासियों का तो ऐश्वर्य भाव नहीं है, जानते हैं कि कृष्ण हमारे घर के हैं और शिव जी हनुमान जी देवता है। ऐसे बच्चे बोले और मैं देखता था रोज, वहां कई दिन था। इस प्रकार ब्रजवासियों का सहज प्रेम है कृष्ण के प्रति और कृष्ण का गोपाल जी का प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति। महाप्रसाद खाल आसिया सब लोग, गोपाल देखिया सब खंडे दुख शोक, तो ब्रजवासी सब जुट रहे थे, जो भी आए भगवान का प्रसाद उनको मिला, गोपाल का दर्शन करके प्रसाद खा करके सब दुख सुख नष्ट हो गया। सबको ये ज्ञान हुआ ना कि हमारे इसी गांव के निवासी हैं गोपाल जी, भले श्री विग्रह के रूप में है लेकिन वो जानते थे कि गोपाल जी है, श्री कृष्ण है। कितना दिन झाड़ी में थे, कुंज में थे, अब प्रकट हुए। आस पास ब्रज भूमि जत ग्राम सब एक एक दिन सवे करे महोत्सव। गोवर्धन के आसपास जो भी गांव थे ब्रज में पूरा, एक एक गांव के आदमी एक दिन महोत्सव करते थे। रोज अन्नकूट जैसा फेस्टिवल होता था, प्रसाद को विशाल मात्रा में एक गांव के लोग एक दिन करते थे। तो बहुत गांव हैं। इस समय ब्रज में 1300 गांव है पूरे 84 कोस में, उस समय इतने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो गांव थे एक एक दिन सब प्रसाद करते थे, महोत्सव करते थे। गोपाल प्रकट सुनी नाना देश भैते, नाना द्रव्य लैया लोक लागिल आशिते। गोपाल प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये खबर जब फैली चारों तरफ गांव में, तो लोग अनेक द्रव्य लेकर के भगवान के भोग के लिए, श्रृंगार के लिए बहुत भेंट लेकर के आ रहे थे। भगवान प्रकट हुए हैं ये सुन करके लोग बहुत भेंट लाते थे, भोग लगाने के लिए तो लाते ही थे, इसके साथ साथ और भी चीज लाते थे। मथुरा रोग सब बड़ बड़ धानी, भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दे धानी। मथुरा में बड़े धनी धनी लोग थे, सेठ साहूकार, वे सब भी आने लगे। कोई सोने की माला ला रहे थे, कोई कुछ ला रहे थे, अनेक सिंहासन आदि। मथुरा लोग सब बड़ बड़ धनी, मथुरा के लोग बड़े बड़े धनी हैं, धनी थे वे लोग। भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट देते थे। जैसे शुरू शुरू में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए इस देश में, कृष्ण बलराम मंदिर बना, तो बहुत लोग आते थे भेंट लेकर के भगवान की सेवा करते थे। हमने सुना था जैसे, तो भगवान कृष्ण को पहले से ही लोग जानते हैं यहाँ, परंतु फिर भी श्री भगवान जब इस काम में प्रकट हुए तो बहुत प्रेम करते थे लोग बाहर। स्वर्ग रौप्य वस्त्र गंध भक्ष उपहार, असंख्य आयु से नित्य बढ़िल भंडार। कुछ लोग सोना लाते थे मथुरा से, कुछ लोग चांदी, कपड़ा, गंध चंदन अगरबत्ती आदि, और भक्ष उपहार खाने के लिए भगवान के लिए लाते थे, मिठाई फल आदि सब लाते थे। तो असंख्य आयु से असंख्य उपहार आया, असंख्य लोग आते थे, इसीलिए नित्य बढ़िल भंडार, इसीलिए भगवान गोपाल का भंडार बहुत बढ़ गया। रखना पड़ता है सब समान भंडार में, भंडार बहुत हो गया। एक महाधनी क्षत्रिय कराई लो मंदिर, एक महाधनी क्षत्रिय राजा भगवान के लिए मंदिर बनवाए। केह पाक भंडार कैल केह तो प्राचीर, कोई रसोई बनवाया भगवान का और कोई बाउंड्री प्राचीर। एक एक ब्रजवासी एक एक गादी दिल, जितने ब्रजवासी थे जितने परिवार थे सब गोपाल के लिए एक एक गाय दिए गोधाम की। तो गाय बहुत संख्या में हो गई, ब्रजवासी सभी एक एक गाय दे रहे थे, तो गाय रखने की जगह भी नहीं रही। परंतु उधर उस समय गोचारण भूमि बहुत ज्यादा थी, तो गोपाल जी की असंख्य गौएं भी हो गई। एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिल, गाय माने गाय, सहस्र सहस्र गाभी गोपाल रहे, हजारों हजारों गौरे हो गए, एक एक गाय दे रहा है एक एक परिवार, बहुत काफी भगवान की गौरे हो गए। गौर है ते आइला दुई बैरागी ब्राह्मण पूरी गोसाई राखी लता के करिया जतन। तो बंगाल से दो विरक्त ब्राह्मण आए थे वहां, तो मधुरेन्द्रपुरी उनसे आग्रह किए आप लोग रहिए पूजा कीजिए। तो सही दुई शिष्य करी सेवा समर्पित राज सेवा हर पूरी आनंद बाढ़ उन दोनों को। तो बंगाल से आए थे मधुरेन्द्रपुरी ने दीक्षित किया, उनको शिष्य बनाया और भगवान की सेवा उनको सौंप दिया। राज सेवा होती थी, राज भोग ना सब चीज श्रृंगार भोग और मंदिर की सजावट आदि सब कुछ राज द्रव्य, मतलब राजा को जैसे सब कुछ खाने को मिलता है वैसे गोपाल जी को मिला। छाक बाग पढ़ गया यही मत वत्सल दुई करी लो सेवान, एक दिन पूरी गोसाई देख लो सोपन। इस तरह एक साल सेवा चली और माधवेन्द्रपुरी वहीं रहते थे और ये दोनों ब्राह्मण जो सेवा अधिकारी बने वे भी वहीं रहते थे। तो एक दिन माधवेन्द्रपुरी ने सपना देखा, सपना में क्या देखे, गोपाल कहे पूरी अमार ताप नहीं जाए। गोपाल प्रकट हुआ सपना में और कहता है माधवेन्द्रपुरी मेरा ताप नहीं जा रहा है, मुझे जो इतने वर्षों तक गर्मी लगी है गर्मी जा नहीं रही है, ताप जा नहीं रहा है, मलय चंदन लेप तवे से जुड़ा है। मैं सोचता हूँ कि हमको मलय गिरी का चंदन अगर लेप किया जाए शरीर में लगाया जाए तब हमारा ताप जाएगा। तो कहाँ मलय गिरी केरल में है और ये है मथुरा वृंदा, इतना दूर से मलय चंदन लाना है। भगवान ने कहा कि तभी हमको ठंडाई मिलेगी, तभी मैं जुड़ाऊंगा यदि मलय गिरी का चंदन उस पर लेप किया जाएगा। मलय जो आना जाया नीला चल रहे थे हमने है ते नहे तुम चल रहा, आप लाइए चंदन हमारे लिए। भगवान कृष्ण सपना में बोल रहे हैं हमारे लिए चंदन लाइए और यहाँ से आप नीलाचल होते हुए जाइएगा, जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा तो नीलाचल होते हुए जाइएगा, और कोई नहीं सेवा कर पाएगा ये आप ही कीजिए। अन्य है ते न है तुम्हें चल आप, अन्य कोई नहीं करेगा आप ही जितना शीघ्र जाइए और चंदन लाइए। स्वप्न देखी पूरी गोसाई है लो प्रेमावेश प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश। स्वप्न देख करके माधवेन्द्रपुरी बिल्कुल आनंद में विह्वल हो गए कि भगवान हमको इस तरह आज्ञा दे रहे हैं, तुरंत ही चले पूर्व देश। जगन्नाथपुरी ईस्ट में है भारत में, तो पूर्व देश में चले। सेवा में निर्बंध लोग करी लो स्थापन आज्ञा मांगी गौर देश से करी लो गमन। तो सेवा के लिए कहा उन्होंने सबके लिए निर्बंध किया, नियम बनाया ये व्यक्ति ये करेगा वो करेगा और सेवा अच्छी तरह से होनी चाहिए। कहीं भी कोई जाता है तो अपने ठाकुर जी की सेवा का भी ध्यान से रखना होता है। किसी अपने मित्र को या अपने सखी को कोई स्त्री या पुरुष से कहता है कि आप 10 दिन के लिए हमारे ठाकुर जी की सेवा करते रहिएगा। तो इस तरह गोपाल की सेवा सौंप करके और भगवान को प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांग करके माधवेन्द्रपुरी पहले बंगाल हो गए। शांतिपुर आयला अद्वैताचार्य घर है पूरी प्रेम देखी आचार्य आनंद। तो जब गए बंगाल तो शांतिपुर गए हैं। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य रहते थे, तो वहां गए मधुरपुरी का प्रेम देख करके चकित हो गए अद्वैत आचार्य। तार खाई मंत्र लैला जतन करिया, ये भगवान के अवतार हैं अद्वैत आचार्य, फिर भी बहुत आग्रह करके मधुरपुरी से इन्होंने दीक्षा लिया, मंत्र लिया, चलेगा दक्षिणपुरी तारे से दीक्षा दिया और अद्वैताचार्य को दीक्षा देकर मधुरपुरी दक्षिण देश की तरफ वहां से दक्षिण चले। रेमुनाथ कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया हैल विहल मन। रेमुना में गोपीनाथ जी का दर्शन किए और भगवान का दर्शन करके प्रेम में विह्वल हो गए। नृत्य गीत करी जग मोह ने बसिला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछिला। नृत्य गीत किए जगमोहन में, जहाँ भगवान का घर होते उसके आगे फर्श पर खूब गान किए नृत्य किए। इसके बाद पुजारी से पूछे कि क्या क्या भोग लगता है, यदि किसी से कुछ मांगते नहीं थे लेकिन पूछने लगे कि भगवान को क्या क्या भोग लगता है। सेवा रस और सौ देखी आनंदित मन, मधुरपुरी का मन बड़ा प्रसन्न था, सेवा बहुत अच्छी हो रही थी वहां पर गोपीनाथ जी की। उत्तम भोग लागे ऐसा पूछी अनुमाने, तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ उत्तम भोग लगता होगा, बहुत अच्छा से खिलाया जाता होगा भगवान को, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न थे, हृष्ट पुष्ट लगते थे। जब सेवा अच्छी होती है तो भगवान भी प्रफुल्लित रहते हैं, और सेवा नहीं होती है तो लगता है भगवान रो रहे हैं, कोई दुख है। मंदिर में भी ये बात देखा जाता है, प्रतिदिन ऐसा अनुभव होता है। यदि मंदिर में कोई दुख है, किसी भक्त को कोई कष्ट हो गया है, तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं रहते। मधुरपुरी ठाकुर ने देखा कि यहाँ तो भगवान बहुत प्रसन्न है, इसका अर्थ है बहुत अच्छे से खिलाया जाता है, इनको भोग अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि क्या क्या भोग लगता है। जैसे ही यह भोग लगे सकल पूछिबा तैसे बिहाने भोग गोपाल लगाईबा, तो कहेगी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जैसा भोग गोपाल को लगता होगा यहाँ गोपीनाथ जी को, ऐसा ही भोग मैं गोपाल जी को लगाऊंगा गोवर्धन में अंदर में, इसके लिए पूछ रहे थे। सबसे पूछे क्या क्या भोग लगता है, कि ठाकुर जी इतना प्रसन्न है तो खूब खा रहे होंगे तब ना खिलाना चाहिए ठाकुर जी को, अपने घर में रख करके जगन्नाथ जी को गौर मिठाई को या राधा कृष्ण को खिलाना चाहिए। अच्छा, जितना अपने घर में और जितना बार बनता है उतने बार बनना चाहिए कम से कम, और उससे बेटर ही भोग लगना चाहिए। यही धर्म है, यही भक्ति है। तो जैसे यह भोग लगे सकल पूछी वह तैसे भी ध्याने भोग गोपाल लगाई वह, तो मैं भोग पूछ लू कौन कौन भोग लगता है, इसके बाद में गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। यही लागी पूछे जन ब्राह्मण स्थान, ब्राह्मण कहिल सब भोग विवरे, तो पुजारी ब्राह्मण से पूछे सब कि क्या क्या भोग लगता है, तो उसने बताया भोग विवरण, भोग क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है, कितना टाइम लगता है, उसने बताया। संध्या भोग लागे खीर अमृत के लिनाम, शाम के समय भगवान को यहाँ भोग लगता है खीर, खीर का शुद्ध दूध है और उसको औटते औटते धीरे धीरे औटा जाता है, गाढ़ हो जाता है, उसका नाम है अमृत के लिए। पुजारी ने बताया कि शाम के समय खीर भोग लगता है और उसका नाम है अमृत के लिए। द्वादश मृत पात्र भरी अमृत समान, 12 बर्तन में भोग लगता है गोपाल जी को, गोपीनाथ जी को, बारह इतने बड़े बड़े माटी के बर्तन थे मटका, उसमें भोग लगता था। बारह पात्र गोपीनाथ है क्षीर बलि प्रसिद्ध नामदार। पुजारी ने कहा कि गोपीनाथ जी का खीर बहुत प्रसिद्ध है, बारह भोग लगता है और इसके बाद प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है सबको। पृथ्वी पे ऐसे भोग कहाँ नहीं आए। पुजारी ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर इतना सुंदर भोग कहीं नहीं लगता है। ऐसा ही अमृत के भी स्पेशल भोग है गोपीनाथ जी का। उसने बताया कि इसको अमृत के लिए कहा जाता है और संध्या के समय भोग लगता है बारह बर्तन में। हेमक काल ऐसे ही भोग ठाकुर लागे सुनीपुरी गोसाई की चुपत मने बिचारे तो रुक गए और संध्या के समय भगवान गोपीनाथ जी को वही भोग लगा, खीर भोग। मन में विचार करने लगे माधवेन्द्रपुरी कि अयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाई स्वाद जाने पैछे क्षीर गोपाल लगाए। यदि हमको थोड़ा सा खीर मिल जाता, मन में सोच रहे थे, मान तो सकते नहीं थे, अयाचित वृत्ति थी उनकी, थोड़ा सा यदि खीर मिल जाता है तो इसका टेस्ट जान लेता तो ऐसा ही भोग गोपाल को लगाते। वृंदावन पहुंचने पर गोवर्धन में जाकर के वहां गोपाल जी को ऐसा ही भोग लगाते हैं कि थोड़ा स्वाद जान लेता है, लेकिन मांग सकते नहीं थे, अयाचित वृत्ति बिना मांगे कुछ मिल जाए तो ठीक है। ये इच्छा हुई कि थोड़ा खीर मिल जाए। ए इच्छा या लज्जा पर विष्णु स्मरण कैला हे न काले भोग सरियार बाजिल। खीर खाने की इच्छा हुई, क्यों हुई कि इसका स्वाद जान करके तब गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन इस पर भी वे विष्णु स्मरण कर रहे हैं, विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण, मैं क्या सोच रहा हूं, खाने के चक्कर में हो गया। खाने के चक्कर में नहीं थे, भक्ति थी, लेकिन तुझे ऐसा मैं क्यों सोचा है। ये सोच करके रह गए और आरती हुई भोग लगने के बाद। आरती देखिया पूरी कहला नमस्कार, बाहिरे आईला काल किछु ना कहला हार। आरती देख करके मधवेन्द्रपुरी ठाकुर मंदिर से बाहर आ गए, किसी से कुछ कहे नहीं। अयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, अयाचित पाइले खाना है उपवास। बिना मांगे ही कुछ मिल जाता था तो एक खाते थे भगवान का प्रसाद, लेकिन अगर नहीं मिलता था तो उपवास करते थे, फास्टिंग कर देते थे। और मन में इच्छा हो गई, देखिए अपने भक्त की इच्छा को भगवान किस तरह पूरा करते हैं। भगवान को ही भोग लगाने के लिए खीर का टेस्ट जानना चाहते थे। प्रेमामृत तृप्त शुद्धा तृष्णा ना ही बाध है, क्षीर इच्छा हर लगता है मान्य अपराध है। प्रेमावेश में, प्रेम के आवेश में नरेंद्रपुरी को कभी भूख और प्यास नहीं सताती थी। खीर खाने की इच्छा हुई, इसको वे अपराध मानने लगे, करे क्या मैं अपराध किया, ये प्रसाद खीर खाने की इच्छा तो उसको अपराध मानने लगे। ग्रामेर शून्य हाट बसी करे न कीर्तन, यथा पुजारी कराइल ठाकुर सलाम। बाहर जा करके शून्य गांव था, बाजार वजार सब बंद हो गए थे, गांव में शयन किए, लेट गए, जॉब कर रहे थे, शयन नहीं किए। ग्रामीण शून्य हाटे बसी करे ना कीर्तन, जॉब कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पुजारी क्या किया कि ठाकुर जी को शयन कराया, शयन कराया, शयन कराने से पहले उसने जो मटके थे वो उठाया ट्रांसफर में रखने के लिए तो जल्दी जल्दी में बेचारा गिना नहीं, 12 बर्तन में भोग लगता था लेकिन गिना नहीं, वो झटपट में सुलाने के फेर में था तो बर्तन कौन गिनने जाए, मटका से 12 गिना नहीं, 11 ही थे, रख दिया। हुआ क्या कि गोपीनाथ जी एक मटका को अपने पैर के पीछे सिंहासन के पास अपने धोती से ऐसे ढांप लिए। चोरी किए तो पुजारी सो गया। इसके बाद ठाकुर जी उसको सपना दिए पुजारी को, उठा हो पुजारी कर द्वार विमोचन, खीर एक राखी अच्छी सन्यासी कारण। पुजारी उठो, द्वार खोलो मंदिर का, और एक सन्यासी आए हैं उनके लिए मैं एक मटका माखन खीर रखा। पुजारी उठा, भगवान ऐसे स्वप्न दिए। धड़ल अंचले झका एक छीर है, तुम्हारा न जानिया तहा अमर माया है। मैं पर्दा के पीछे अपने धोती से छिपा करके एक मटका रखा खीर, मेरी माया से तुमको कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम तो जल्दी में रख लिए, एक में छिपा करके रखा। माधवपुरी सन्यासी आछे हाथे पे बसिया, माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हैं जो बाजार में बैठे हैं, सब दुकानें बंद हैं, एक दुकान पर बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। तहा के तो ये खीर शीघ्र देहल रैया, ये जो हम चुरा करके रखे हैं खीर, ये बर्तन दे करके खीर का और उस सन्यासी को दो, जरा समय में खोला। लगभग 9 बजे भगवान शयन किए होंगे तो 9:30 में पुजारी को अभी पूरी नींद नहीं आई थी, तब तक सपना हुआ कि मैं खीर चुरा करके रखा हूँ, दे दो माँ चंद्रपुरी। तो सबसे पहले देख स्वप्न देखी पुजारी उठी कहिला विचार, स्नान करी कपट खुली मुक्त कहिला द्वार। तो स्नान करना जरूरी होता है, वो पुजारी उठा और स्नान किया, स्नान करके भगवान का मंदिर खोला, भगवान का खास घर जिसमें रहते हैं। धरा आचल तबे पैर से फिर भगवान का भीतरी पर्दा हटाया, धोती की तरफ पीछे सिंहासन के देखा तो सचमुच के एक मटका रखा हुआ है खराब। स्थान लेपी छीर लैया है बाहर, फिर स्थान को जिसे प्रसाद उठाने के बाद भी स्थान को पोछना चाहिए, तो पोछा स्थान को और लेकर के बाहर लिया, हाथ में मटका लिया है खीर से भरा हुआ, द्वार दिया ग्राने गया, अब मंदिर का दरवाजा बंद करके गांव में गया, द्वार दिया ग्रामे गेला से खीर लैया, हाटे हाटे बोले माधवपुरी के चाहिए। अब माधवपुरी को देखने के लिए भेंट करने के लिए पूछने लगा, माधवेंद्रपुरी कहाँ है, माधवेंद्रपुरी कहाँ है, तो गांव में कौन बताएगा कि कहाँ है, किसी को अपना नाम तो बताए नहीं थे। खीर लह तुम्हें जर नाम माधवपुरी, जिनका नाम माधवपुरी है माधवेंद्रपुरी, वे खीर ले तुम्हारे लागी गोपीनाथ छीर कैला चोरी, आपके लिए गोपीनाथ जी खीर चुराए हैं, ये खीर लीजिए। कहाँ है माधवपुरी, माधवपुरी रात्रि में बोल रहा था तो अकस्मात मैंने सुना, खीर लैया सुखे तुम्हें करो भोजन, आप खीर लेकर के भोजन कीजिए, काफी खीर है, बड़ा बर्तन था, 12 बर्तन में भोग लगता है, तो आप खीर लेकर के भोजन कीजिए। तोमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवन, आपके समान भाग्यवान इस तीनों जगत में कोई नहीं है जिसके लिए भगवान खीर चुराए। तो आप लीजिए खीर खाइए। एतस्वी पुरी गोसाई परिचय दिल खीर दिया पुजारी तारे दंडवत करो। आईला माधवेंद्र पुरी ने अपना परिचय दिया, हाँ मेरा नाम माधवेंद्र पुरी है। खीर लीजिए और खीर दे करके पुजारी तब उनको सष्टांग प्रणाम किया। खीर दिया पुजारी तारे दंडवत कहला, खीरे वृत्तांत तार कहला पुजारी सुनी प्रेमाविष्ट है श्री माधव पुरी। खीर का सारा वृत्तांत सुनाया पुजारी ने, इस तरह भगवान ने हमको सपना दिया और एक खीर चुरा लिया था, और बाद में उन्होंने सपना दिया कि मैं चुराया हूँ माधवेंद्रपुरी के लिए, तुम बाहर जाकर के दे आओ। तो ये घटना है। शीरे ने वृतांत तारे कहला पुजारी, पुजारी ने खीर का वृतांत सुनाया, सुनी प्रेमाविष्ट हो लो श्री माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी प्रेमाविष्ट हो गए, भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं। प्रेम देखी सेवक कहे हैया विस्मित, कृष्ण जय इहार बस हैया यथोचित। माधवेंद्रपुरी का वो कीर्तन और वो प्रेम विकार, शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू की धारा, बाही गदगद, इस तरह से जब पुजारी ने देखा तो कहा निश्चित ही श्री कृष्ण इनके बस में है, गोपीनाथ जी इनके बस में है। ये बिल्कुल उचित बात है, इतना प्रेम भगवान के प्रति है, इसीलिए तो भगवान ने इनके लिए खीर चुराया, ये बिल्कुल उचित है। एत बल नमस्कारी करीला गमन आवेश करीला पुरी से क्षीर भक्षण, इतना कह करके और प्रणाम करके पुजारी चला गया। तो प्रेम आवेश में माधवेंद्रपुरी ठाकुर रो रहे थे, गदगद बाणी थी भगवान का नाम लेने में, और भगवान हमारे लिए खीर चुराए हैं, यह स्मरण करके बहुत प्रेम से खीर खाए, धीरे धीरे करके खाए और प्राप्त प्रक्षालन किए। खा रहे थे, रोमांच हो रहा था, आंसू आ रहा था, लेकिन खा रहे थे, खा करके पात्र प्रक्षालन करी, बर्तन को धोए, पात्र को धोए, पात्र क्या करे, पात्र को खंड खंड कर लिए, तोड़ लिए, और एक एक खंड रोज खाते जाते थे बर्तन को। पात्र प्रक्षालन करी, खंड खंड कैला, बहिर्वास से बांधी से ठिकारी रखेल, और बहिर्वास उनके पास तो कोई चादर और पीठा नहीं, साल और बहिर्वास, बहिर्वास में कौपिन के ऊपर पहना जाता है, कितना तक लंबा रहता है उठेगा वही, तो उसी बहिर्वास में मटका के टुकड़ा करके भर लिए, बांध लिए, प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण खाई ले प्रेम आवेश है अद्भुत कथन। मटका का एक छोटा सा टुकड़ा रोज खाते थे और खाने में और प्रेमावेश होता था कि भगवान इसने खाए हैं और वे चुराए हैं, इस बर्तन को हमको दिए हैं, तो उसको कैसे फेंकते, बर्तन भी खाते जाते थे। ठाकुर मोरे छीर दिला लोक सब सुने, दिने लोक भीड़े भवे मोर प्रतिष्ठा जारी। तो माधवेंद्रपुरी तुरंत वहां से चले गए, क्यों, उन्होंने सोचा कि इस बात का प्रचार पुजारी कर देगा कि माधवपुरी के लिए भगवान खीर चुराए थे, तो हमारी लोक में प्रतिष्ठा होगी, बहुत नाम बढ़ेगा, तो लोग बहुत भीड़ करेंगे, हमको प्रणाम करेंगे, हमको बहुत भारी डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए वहां से चले गए। यदि आज का साधु होता तो इसका तो कम्प्लीट छाप करके क्या क्या खाता नहीं हुआ है, वो है ना, बहुत जमाना बदल गया है। मधुरे में पूरी जल्दी भागे कि कोई जाने न कि भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया, बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत लोग आएंगे। एक साधु के लिए प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, संत के लिए, विरक्त के लिए प्रतिष्ठा नाम होना, यह विष्ठा ही नहीं सुअर की विष्ठा है। सुअर की विष्ठा मतलब विष्ठा का विष्ठा, सुअर खाता है आदमी का विष्ठा और उसका सार भाग बनता है सुअर की विष्ठा। तो ये नाम होना समाज में बड़ा रूप में, चाहे किसी रूप में, कि बड़ा भक्त है, ये है, वो है, ये प्रचार हो, तो एक साधु के लिए सुकरी विष्ठा है। आदमी जिस प्रकार से सुअर की विष्ठा देख करके नाक बंद करता है, भागता है, ऐसे कहीं भी मान सम्मान हो तो साधु सन्यासी को चाहिए कोई से दूर हो। तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर सोचे कि बहुत भीड़ होगी और बहुत नाम बढ़ेगा, तो इसीलिए से ही भावे रात्रि सेवे चलीला श्रीपुरी, इसी भय से ही भय, इस भय से रात में उठे, उसी रात में जिस रात खीर मिला था उसी रात में उठे और भाग गए श्रीपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, यमुना से चलते चलते आए। किसी से कोई बताया नहीं कि हम भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया, ये चुराया, वो चुराया। आज के युग में क्या पतन है लोगों का, थोड़ा नाम कमाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाना, राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचाना, ये हो गए, ये हो गए, तो इससे तो पतन ही होता है, इससे तो कोई लाभ नहीं है। मैं वेद पूरी ठाकुर का जो आचरण है ये साधु का आचरण होना चाहिए। ये भाग गए उसी रात में चलते चलते वे आ गए जगन्नाथपुरी। सही भय रात्रि शेष से चले गए श्रीपुरी, रात्रि के शेष में घोर में उनका चले गए। सही खाने गोपीनाथ से दंडवत करे, जहां थे वहीं से दंडवत किए गोपीनाथ जी को, यहां तक कि जो भगवान खीर खाए हैं, चुराए हैं इनके लिए, उनका दर्शन भी मंगलारती में नहीं किए, क्योंकि मंगलारती में जाने पर फिर पुजारी हो सकता है दो चार लोगों से कह दे कि इनके लिए ठाकुर जी ने खीर चुराया था और हमको सपना दिया, इसलिए मंगलारती से पहले ही चले गए। जहां थे वहीं से दंडवत किए, सही खाने गोपीनाथ से दंडवत कर, जहां थे वहीं से दंडवत करके और चले गए। कितना हम निष्क्रिय है, चली चली ऐलापुरी श्री नीलाचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेमे ते विवल, चल चल करके पैदल ही, उसमें तो कोई सवारी नहीं थी, चल चल करके श्री माधवेंद्रपुरी नीलाचल पहुंचे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी को देख करके प्रेम में विवल हो गए, प्रेमावेश उठे पड़े हासे नाचे गाय, जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। जगन्नाथ मंदिर में माधवेंद्रपुरी कभी उछलते थे, कभी गिर जाते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे, जगन्नाथ जी को देख करके उनके दर्शन के महासुख में निमग्न हो गए। प्रेमारे से उठे पड़े हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए, माधवपुर श्रीपद आई लोके है ख्याति, सब लोग आशीषारे करे बहु भक्ति। जगन्नाथपुरी में ये प्रचार हुआ कि श्री माधवेंद्रपुरी ठाकुर आए हैं, बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे, तो बहुत लोग आ रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। प्रतिष्ठा स्वभाव है जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का यही स्वभाव है, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, बचना चाहता है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा होती ही है, प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित संसार में विदित है। जीना वंश तार है विधाता निर्मित, प्रतिष्ठा नहीं चाहने पर भी प्रतिष्ठा होती है क्योंकि ये विधाता का निर्मित विधान है, भगवान का विधान होता है, उसके अनुसार प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा भय पूरी गेला पलाइया, प्रतिष्ठा के भय से जगन्नाथ पूरी श्री भाग गए। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं चाहता है तो प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे लगती है, और जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वो तो आत्महत्या के समान है। वास्तव में वही व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है जिसकी बड़ाई करने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं है। क्या करे, अपने से ही अपनी गुण गाथा करता रहता है। तो वहां से जगन्नाथपुरी से भी भाग गए, बहुत लोग आ रहे थे तो प्रतिष्ठा भय पूरी गेला पला लिया। उनको तो भगवान की सेवा की उमंग थी, चंदन लाना था। तो कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले साथ लड़ाई है। जो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है किसी भक्त में तो प्रतिष्ठा भी साथ साथ ही चली है। जहां जा रहे थे माधवेन्द्रपुरी तो प्रतिष्ठा भी साथ साथ जा रही है। सब जगह ये पता हो गया था कि परम विशुद्ध वैष्णव है भक्त। यद्यपि उद्वेग है पलायु के मन ठाकुर चंदन साधन है बंधा, उनको भागने की इच्छा हो रही थी, एकांत में रहने की इच्छा हो रही थी, प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, लेकिन ठाकुर की सेवा एक बंधन हो गया। भगवान ने डायरेक्ट कहा था कि तुम चंदन लाओ, हमारे शरीर ग्रह पर लेप करो जिससे मेरा ताप चला जाए, मेरी जलन चली जाए। इसके फिर मैंने थे तो कुछ लोगों से तो कनेक्शन करना ही पड़ेगा चंदन के लिए। जगन्नाथ सेवक जत जते का महान सदा के कहिला पुरी गोपाल बेटान। तो जगन्नाथ पुरी में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सेवा के अधिकारी मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, गोपाल जी ने इस तरह से कहा है और उनको ताप है, उसके लिए चंदन चाहिए। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, आनंद चंदन लागी करी बार जाते हैं। स्वयं भगवान ने चंदन मांगा है, जो वहां के लोगों ने सुना, पुरी के भक्तों ने, तो बड़ा आनंद आया, लोग चंदन के लिए प्रयास करने लगे। राजपात्र सोने जार जार परिचय, तार मांगी कर्पूर चंदन करेगा संचय। भगवान की कृपा, माधवेन्द्रपुरी वहां कहा तो वहां जितने भी बड़े बड़े लोग थे वे सब भगवान के लिए कर्पूर और चंदन का संचय करने लगे। एक भी एक सेवक चंदन न बहिते, पूरी गोसाई संगे दिल संबल सहित। ठाकुर माधवेन्द्रपुरी को मलयगिरी नहीं जाना पड़ा, मलयगिरी का चंदन चाहिए था उनको, तो जगन्नाथपुरी में ही उनको चंदन मिल गया पूरा। जानते हैं कितना, एक मन 40 से चंदन, और पैदल लेकर के आना है वृंदावन में। भगवान की सेवा का ये प्रभाव, प्रेम का प्रभाव। तो और जगन्नाथपुरी में हम लोगों ने एक ब्राह्मण दिया, एक विप्र, एक सेवक चंदन बहित। ब्राह्मण एक दिए और एक सेवक जो चंदन को ढोएगा। पूरी गोसाई संगे दिला संबल सहित, पूरी गोसाई को दो व्यक्ति दिए, एक ब्राह्मण भिक्षा सम्मान का खिलाने के लिए, ये तो आयाचित वृत्ति थे, कहीं मानते नहीं, तो एक ब्राह्मण दिए इनको और एक सेवक जो चंदन लेकर के चलता है। और इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी में ही माधवेन्द्रपुरी जी को संबल दिए। संबल का अर्थ है साथ में जो व्यक्ति चल रहा था ब्राह्मण उसको पैसा दिया गया कि कहीं कहीं घाट में कहीं टोल टैक्स लगेगा तो ये देगा। जैसे पहले भी नियम था कोई लकड़ी ला रहा है खास करके चंदन या सोना चांदी कहीं से तो कहीं कहीं चेक होता था उसके लिए कुछ पैसा देना होता था। कहीं नदी पड़ जाती थी तो नौका पर चढ़ना होता था, नौका पार करने में भी पैसा लगता था। इस तरह से सारी व्यवस्था की गई जगन्नाथपुरी में कोई बीच में दिक्कत ना हो। और घाटी दानी छड़ाइते राजपत्र द्वारे राज लेखा करी देवपुरी गोसाई से करे। जगन्नाथपुरी के जो राजा थे महाराज प्रताप रुद्र से पहले तो वे राजपत्र लिखे सर्टिफिकेट बनाए कि ये जो लेगा रहे चंदन भगवान की सेवा के लिए कोई व्यापार के लिए नहीं बेचने के लिए नहीं लगा रहे कहीं इनसे टैक्स न लिया जाए। जो राजा ने लिखा तो उस पत्र को साथ में बाघेन्द्रपुरी रख और उसके साथ ही चले चलिल माधवपुरी चंदन मैया कत दिन मिलते उत्तर लगिया चले। और कुछ दिनों के बाद ये पुनः रेमुड़ा पहुंचे गोपीनाथ जी के पास जहाँ भगवान इनके लिए खीर चुराए थे। फिर उसी स्थान पर गए गोपीनाथ चरण ले कैला बहु नमस्कार प्रेमावे से नृत्य गीत करीला अपार। गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और इसके बाद लगे नाचने गाने लगे। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करीला शीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराएगा तो पुजारी फैला दिया था इस बात को कि माधवेन्द्रपुरी नाम के एक साधु आए थे सन्यासी उनके लिए भगवान ने चुराया था। तो फिर वही पहुंचे तो पहचान लिया कि वही सन्यासी हैं। तो जितने भी पुजारी थे सब बहुत सम्मान किए और ला करके खीर प्रसाद दिए बिना मांगे ही माधवेन्द्रपुरी। सही रात्रि देवालय करील शयन शेष रात्रि उठी पूरी देखी स्वपन। तो उस दिन रेमुणा में ही गोपीनाथ जी के मंदिर में वे शयन किए और सपना देखे माधवेन्द्रपुरी। सपना में गोपाल आसिया कहे सुन है माधव। वही वृंदावन वाले गोवर्धन वाले गोपाल जी प्रकट हुए सपना में और कहे हे माधवेन्द्र सुनो कर्पूर चंदन आमी पायलाम सब। जो कर्पूर और चंदन जो मेरे लिए तुम पाए हो तो कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन गोपीनाथ अंगे नित्य कर हसलेपन। आप ऐसा करो कि ये कर्पूर के साथ चंदन को घिस घिस करके और श्री गोपीनाथ जी के शरीर में लेपन करो। तो मदनपुरी ने कहा कि ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ आपको बहुत ताप हुआ है जलन हुआ है आपको लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं नहीं गोपीनाथ जी को तो गोपीनाथ हमारा जो एक ही अंग है हम और गोपीनाथ जी एक ही है हम लोगों में भेद नहीं है। यह के चंदन दिले हवे मोर ताप छाए। यदि गोपीनाथ जी को चंदन दिया जाएगा तो सब ताप का क्षय हो जाएगा हमारा ताप चला जाएगा। द्विधा न धारी न करी किसी मने विश्वास करे चंदन देह हमारा बचन। दो बात भेदभाव मत की करो विचार दूसरा नहीं मैं जो कहता हूँ करो बिना विचार किए तुम गोपीनाथ जी को चंदन दो। बलि गोपाल गेला गोसाई जागी यह कह करके गोपाल चले गए माधवेन्द्रपुरी ठाकुर जगे गोपीनाथ के सेवक गड़े टाकिया में। तो गोपीनाथ जी के सेवकों पुजारियों को बुलाया और कहा प्रभु आज्ञा हाईला एक कर्पूर चंदन गोपीनाथ के संगे नित्य कला अंगे नित्य कला लेपन इसका लेपन रोज करो। तो माधवेन्द्रपुरी ठाकुर वहां रह गए एक महीना। यद्यपि भय था कि प्रतिष्ठा बहुत फैलेगी लेकिन उन्होंने फिर आज्ञा दिया कि आप लोग इसको लेपन कीजिए गोपीनाथ के अंगे दिला कला लेपन। यह के चंदन दिले गोपाल हवे शीतल स्वतंत्र ईश्वर तर आज्ञा से प्रभाव। भगवान की आज्ञा है और चंदन का लेप करना है। ग्रीष्म काल गोपीनाथ पश्चिम परिवे चंदन, गर्मी के महीने में गोपीनाथ जी चंदन धारण करेंगे। सुनी आनंदित तेरे मान पूरी कहे एक दुई घसी चंदन आर जन्म दुई देह दिवस से वेतन आर जन्म दुई दिवस दिवस से वेतन। तो ये दो हमारे साथ जो आए हैं ये लोग चंदन घिसेंगे, जो ढो करके लाए हैं जगन्नाथपुर से, ये लोग चंदन घिसेंगे और इन दोनों के लिए जो भी वेतन होगा दिया जाएगा। मधुनपुरी ने कहा हे मतलब चंदन दे प्रत्याह घसिया पराय सेवक सब आनंदित करिए। इस तरह चंदन घिस घिस करके ठाकुर जी को लगाया गया अंगों में। प्रत्यह चंदन पराय जावत हेला अंत, जब तक चंदन का अंत नहीं हुआ तब तक रोज घिस घिस करके चंदन लगाया जाता था। तथा रहेगा पूरी तावत प्रजन, तब तक वही रहे, जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक वही रहे। लगभग एक महीना चंदन का लेप किया गया। ग्रीष्म काल अंत पुनः नीला चले गया, नीला चले चातुर्मास आनंद रहेगा। गर्मी के महीने अर्थात जेठ या आषाढ़ वही रहे एक महीना, जब तक चंदन घिसा गया और लगाया गया अंग में। इसके बाद चंदन खत्म हुआ तो नीलाचल चले गए। श्रीमुखे माधवपुरी अमृत चरित भक्त गणे सुनाइया प्रभु करे आस्वादित। चैतन्य महाप्रभु इस कथा को अपने श्रीमुख से कहे, मधुनपुरी की कथा को। प्रभु प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी समय भाग्यवान जगते नहीं आर। ठीक कहते नित्यानंद विचार कीजिए, माधवेंद्रपुरी के समान इस संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। दुग्ध दल छले कृष्ण तारे देखा दिवे, तो दूध देने के बहाने में आकर दर्शन दिए कृष्ण और तीन बारे स्वप्ने आशी चारे आज्ञा दी कर, और तीन बार सपना में आए। एक बार तो सपना में आकर कहे कि मैं कुंज में हूँ, मुझे निकालो मंदिर बनाओ, और दूसरी बार आज्ञा दिए कि हमारे लिए चंदन लाओ, और तीसरी बार आज्ञा दी कि गोपीनाथ में और हमें कोई भेद नहीं है, इनको ही दे दो। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त इतना दूर जाएगा चंदन लेकर के, इसलिए वे सपना में प्रकट हो गए। जगन्नाथपुरी से रेगुना आते आते कह दे कि यही दे दो, हमें और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। तीन बार दर्शन दिए। जाल प्रेम बस रहिया प्रकट हरिला, सेवा अंगीकार कर जगत तारीला। जिनके प्रेम के बस में होकर से भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी सेवा अंगीकार किए और संसार को तारे। जाल लगी गोपीनाथ छीर कहल चूरी, अतएव नाम हैल छीर चोरा हरि। जिनके लिए भगवान ने क्षीर चुराया और उसी दिन से उनका नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। कर्पूर चंदन जाल अंगे चढ़ाई लो, आनंद पूरी गोसाई प्रेम थली लो। भगवान के श्रीअंग पर चंदन लेप लेप करके चढ़ाते थे और आनंद से विवर होते थे। मृक्ष जैसे कर्पूर चंदन आनी ते जंजाल, पूरी दुख चाहे पावे यह जानिया गोपाल। क्यों कह दे कि रेंदना में गोपीनाथ जी को चंदन दे दो। भगवान ने सोचा कि उत्तर में बहुत ज्यादा जवान है, मुसलमान है, और चंदन लेकर आने में उनको बड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए अपने भक्त के दुख को देख करके गोपाल जी ने सपने में कहा कि ये चंदन दे दो गोपीनाथ जी को। महादयामय प्रभु भक्त वत्सल, चंदन करी भक्त प्रेम करी व सफल। महादयामय है श्री कृष्ण, भक्त वत्सल है, चंदन का लेप स्वीकार करके भक्त के परिश्रम को सफल कर दिए। पुरीर प्रेम पराकाष्ठा कर अभिशाल अलौकिक प्रेम की के लागे चमत्कार। कितना प्रेम है पुरी महाराज में, मध्वेन्द्रपुरी में अलौकिक प्रेम है। इसको सुनने पर चित्त में चमत्कार होता है। परम विरक्त मौनी सर्वत उदासीन ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। मध्वेन्द्रपुरी परम विरक्त महात्मा थे और मौन रहते थे, केवल भगवान का नाम लेते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता कोई न करे, गांव की चर्चा है, लौकिक चर्चा, विषय की चर्चा, इसके लिए दूसरे किसी को भी साथ में नहीं रखते थे। क्योंकि दो आदमी रहने पर भी कुछ न कुछ बंधन बातचीत होती रहती है, ये अच्छा है तो ये बुरा है, ये है वो है, तो अकेले ही रहना चाहिए। कोई वैष्णव भी साथ में हो तो उसके साथ कथा बहुत कम होती है, सांसारिक बात ही चलती रहती है, खास करके इसकी निंदा, उसकी प्रशंसा, वैसा है तो ये है वो। इसलिए माधवेन्द्रपुरी किसी के साथ नहीं रहते थे। हेना जन गोपाल आज्ञा में तो पाइया सहस कोश आशी बोले चंदन मंगिया। ऐसा विरक्त सन्यासी भी भगवान की सेवा के लिए 1000 कोष पैदल आया, हजारों कोष पैदल आकर के और चंदन मांगा। भूखे रहे तब अन्न मांगिया न खाया, भूखे रह जाते थे लेकिन मांगते नहीं थे। हेना चल चंदन भाग वही रहे थे, स्वयं भूखे रह जाते थे, कभी मांगते नहीं थे। ऐसे सन्यासी भी भगवान के चंदन को ढो करके ले जा रहे थे, अपने लिए कभी नहीं मांग रहे थे, भगवान की सेवा के लिए इस तरह से लगे थे। मने का चंदन तोला दिलसे का कर्पूर गोपाल पराई बही आनंद प्रचुर। जब लेकर के चंदन चल रहे थे तो एक मन चंदन था 40 शेर, लगभग 37-38 किलो हो जाता, पर भार मालूम नहीं होता था। अच्छा, एक मन वो था और 20 तोला कपूर था, भार लेकर चलते थे लेकिन फिर भी भार महसूस नहीं होता था, क्योंकि आनंद में मग्न थे। किस आनंद में? ये चंदन भगवान को मैं दूंगा, गोपाल जी को दूंगा, भगवान शीतल होंगे, इस तरह से इस भाव में वे भार का अनुभव नहीं किया। उत्कल दानी रखे चंदन देखिया तहा चढ़ाई लाज पत्र देखा लिया। कुछ लोग उत्कल में उड़ीसा में चंदन उतरवा लेते थे, क्या है उतार क्या है इसमें, तो उनको राजा का पत्र दिखाते थे, लाइसेंस या सर्टिफिकेट, तब वो छोड़ देते थे। मृक्ष जैसे दूर पथ जगत ही अपार कीमते चंदन निवरना ही। ये विचार नहीं करते थे कि आगे मृक्षों का राज्य है, यौनों का राज्य है, बड़ा कठिनाई होगी, कैसे चंदन ले जाऊंगे, इसका विचार नहीं कर रहे थे, ले ही जा रहे थे। लेकिन संगे एक वट नहीं घाटी दान बीते तथा उत्साह बड़ चंदन कहेंगे। कौड़ी ढूंढ के पास अब नहीं थी कि आगे टोल टैक्स पर क्या देंगे, कोई मांगेगा तो फिर भी प्रेम में लेते जा रहे थे। प्रगाढ़ है प्रेम ही स्वभाव आचार निज मुख्य बिना देर न करे विचार। प्रेम का तो यही स्वभाव है कि अपने दुख और सुख का विचार नहीं करता, क्या विघ्न होगा इस पर विचार नहीं करता। यही भाव गाढ़ प्रेमा लोके दिखाई थे गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदनानी थे। उनके इसी प्रेम को लोक में दिखाने के लिए श्री भगवान ने गोपाल ने उनको आज्ञा दिया चंदन लाने के लिए। बहु परिश्रम चंदन रेमुणा अनिल आनंद पारहिल मन दुख न गणिल। और इस तरह से चंदन लेकर के रेमुणा आ गए तो भगवान ने उनके परिश्रम को देख करके वे नहीं चाहते थे आगे धुए चंदन और ले चले, तो ये सपना दिया कि मैं ही गोपीनाथ के रूप में हूँ, हमें और गोपीनाथ में भेद नहीं है। परीक्षा करिते गोपाल कैला आज्ञादान परीक्षा करिया शेषे कैला दयावान। पहले तो परीक्षा लिए चंदन लाने के लिए भेजे और जब इनके परिश्रम को देखे तो भगवान में दया उत्पन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि हमको यही दे दो, हमने और गोपीनाथ जी में भेद नहीं है। एक भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझे थे वो हमारा सबका ना ही अधिकार, ये है कृष्ण का व्यवहार भक्त के साथ और भक्त का ये सेवा का उत्साह। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कथा कर रहे हैं, आगे भी कुछ है, इसके बाद साक्षी गोपाल जी की कथा है। हरे कृष्ण जय श्री प्रभु।